आज श्री राम नवमी का पावन दिवस है। इसी दिवस पर त्रेता युग में बहुत साल पहले भगवान श्री रामचंद्र के रूप में इस पृथ्वी पर प्रकट हुए, ठीक दोपहर के 12 बजे, चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष के नवमी तिथि पर, जो कि आज है। और आज का दिवस हमें प्रभु जी श्री रामचंद्र के गुण, लीला और नाम में ज्यादा से ज्यादा बिताना चाहिए। भगवान, जैसे कि गीता में बताया है, हर युग में अवतार लेते हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानम सृजाम्यहम्। धर्म की ग्लानि जब होती है, अधर्म की वृद्धि जब होती है, तो धर्म की संस्थापना करने के लिए, दुष्टों का विनाश करने के लिए, साधुओं का उद्धार और संरक्षण करने के लिए भगवान विभिन्न रूपों में प्रकट होते हैं। इसलिए भगवान के ये विविध रूप सब दिव्य हैं, भगवान से अभिन्न हैं। हम अलग अलग रूप धारण नहीं कर सकते, लेकिन भगवान अपने आप को केवल विस्तारित करके अलग अलग रूप धारण करते हैं, अलग अलग भावों को प्रकट करते हैं। ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी जो कि सृष्टि करता है, वो बताते हैं, रामादि मूर्ति शुकला नियमेन तिष्ठम नानावतारम करोत् भुवनेषु किन्तु कृष्णः स्वयं समभवत् परमः पुमान्यो गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। ब्रह्मा जी कहते हैं, भगवान के अनेक अवतार होते हैं। राम आदि मूर्तिषु नाना अवतार मकरोत् भुवनेषु किन्तु, नाना अवतार होते हैं भगवान के, इनकी गणना हम नहीं कर सकते हैं। श्रीमद् भागवत में बताया जाता है कि जिस तरह से सागर में अनगिनत अनंत लहरें होती हैं, ठीक उसी प्रकार भगवान श्री हरि के अनंत अवतार होते हैं, कोई इनको गिन नहीं सकता है। और ये अवतार कैसे हैं? राम आदि मूर्तिषु, प्रभु रामचंद्र भी भगवान के अवतार हैं। आदि मतलब और बहुत सारे अवतार हैं, जैसे कि नरसिंह अवतार, कूर्म अवतार, मत्स्य अवतार इत्यादि। लेकिन ब्रह्मा जी बताते हैं कि ये सारे जो अवतार हैं, रामादि मूर्तिषु कला नियमेन तिष्ठन, कला है वो। कला मतलब भगवान के अंश हैं या भगवान के अंश हैं। लेकिन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण हैं। कृष्ण स्वयं समभवत् पुरुषः, वो भगवान श्री कृष्ण जिनको गोविंद कहते हैं, वो स्वयं पूर्ण भगवान है, सारे अवतारों के उद्गम हैं। तो भगवान श्री कृष्ण में और श्री राम में अंतर है भी और नहीं भी है। इसलिए क्योंकि वही भगवान अपने आप को अलग अलग रूपों में प्रकट करते हैं, अलग अलग भाव में प्रकट करते हैं, अलग अलग समय प्रकट करते हैं, परंतु हैं वही भगवान। वैसे देखा जाए, भगवान का तत्व वही है, चाहे वो मत्स्य अवतार हो, नरसिंह अवतार हो, राम अवतार हो या भगवान कृष्ण हो, सभी एक मोमबत्ती के समान है। ये उदाहरण भी ब्रह्मा जी देते हैं ब्रह्म संहिता में। अनेक मोमबत्ती अगर हों और उन मोमबत्तियों को आप एक मोमबत्ती से जलाएं, तो बाद में आप देखेंगे कि कितने सारे मोमबत्तियां हैं, एक समान हैं, लेकिन फिर भी उनमें से एक प्रमुख है, क्योंकि वो आदि है। उस मोमबत्ती से अन्य सारे मोमबत्ती जलाए गए। ठीक उसी प्रकार से भगवान के अनंत अवतार जो हैं, वो मोमबत्तियों के समान हैं, कैंडल, और भगवान श्री कृष्ण वो आदि मोमबत्ती है, जिनकी वजह से अन्य सारे अवतार उत्पन्न हुए, और उत्पन्न होने के बाद भी वो भगवान ही रहे, और भगवान श्री कृष्ण में कोई घटन नहीं हुआ, भगवान श्री कृष्ण उतने ही पूर्ण रहे। ओम पूर्णमदः पूर्णम् पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ईश उपनिषद में बताया जाता है कि भगवान पूर्ण है और उनमें से अनेक अंश निकलते हैं जो कि स्वयं पूर्ण हैं, और इतने सारे पूर्ण जब निकलते हैं भगवान से, तो भगवान पूर्ण के पूर्ण ही रहते हैं। ये है भगवान। तो जब भगवान गीता में घोषणा करते हैं कि मैं हर युग में अवतीर्ण हो, हमें मानना चाहिए कि यह सत्य है, कोई मिथ्या, कोई कल्पना, कोई दंत कथा नहीं है। यह सत्य क्यों है? क्योंकि भगवान सत्य है, भगवान भी कोई कल्पना नहीं है, और भगवान जब चाहे तब यहां पर आ सकते हैं, और जब वही भगवान अपने धाम से यहां प्रकट होते हैं, उनको अवतार कहते हैं। त्रेता युग में कई करोड़ों साल पहले प्रभु श्री रामचंद्र प्रकट हुए थे। आधुनिक काल के इतिहास में वैज्ञानिकों को केवल 5-10 हजार साल का इतिहास पता है, और वो भी ठीक से नहीं। थोड़े महीने पहले एक पत्रिका में हमने देखा था कि एक बहुत बड़ी खबर हो गई थी। उन्होंने, ये वैज्ञानिकों ने, द्वारका शहर जो कि समुद्र के नीचे है इस समय, उसमें संशोधन करके ये दिखाया कि ये शहर कम से कम 7,500 साल पुरानी है, और अन्य कोई शहरें हैं। तो ये आजकल वैज्ञानिकों के लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है, और वो कहते हैं कि मनुष्य इससे ज्यादा पहले सभ्य अवस्था में नहीं रहते थे, वो जंगली अवस्था में थे, केवल जंगलों में, गुफों में रहते थे, केवल पशुओं को मारकर खाते थे, कृषि नहीं था और कुछ कार्य नहीं था। लेकिन यह सत्य नहीं है। अनादिकाल से मनुष्य समाज विद्यमान है, लेकिन केवल इतना है कि वैज्ञानिक इस प्रमाण को स्वीकार नहीं करते हैं, वो शास्त्रों को स्वीकार नहीं करते हैं, इसलिए उनको शास्त्रों को मानने की, जो शास्त्रों में जो बातें कही हैं, उनको मानने में कठिनाई होती है। और कई बार जो शास्त्रों को मानते भी हैं, ये बात को समझ नहीं पाते हैं कि अगर भगवान श्री कृष्ण सारे अवतारों के स्रोत हैं, तो फिर श्री रामचंद्र भगवान कृष्ण के पहले कैसे आए? अगर वो पहले आए, इसका मतलब है कि श्री रामचंद्र श्री कृष्ण के उद्गम होने चाहिए। लेकिन जब भगवान अपने अनेक अवतारों में यहां प्रकट होते हैं, तो हमें जानना चाहिए कि उनका जन्म नहीं होता है, केवल यहां पर वो प्रकट होते हैं, अपने धाम में वो निवास करते हैं, और जैसे उनकी इच्छा होती है, स्वेच्छा के अनुसार इस भौतिक जगत में प्रकट होते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि क्योंकि श्री राम पहले प्रकट हुए, इसलिए श्री राम श्री कृष्ण के उद्गम हैं। नहीं, राम ब्रह्मा जी के एक दिवस में एक बार आते हैं, भगवान कृष्ण भी उसी तरह ब्रह्मा जी के एक दिवस में एक बार आते हैं। हर एक अवतार जो भी भगवान के हैं, वो सब ब्रह्मा जी के एक दिवस में एक बार ये भौतिक जगत में अवतीर्ण होते हैं। इसलिए कोई पहले आया कोई बाद में, कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई अवतार किसी दूसरे अवतार के पहले आए, इसका मतलब ये नहीं कि वो दूसरे अवतार के उद्गम हुए। ये तो चक्र चलता रहता है, हर एक युग में भगवान का कोई ना कोई अवतार चलते रहता है, आते रहते हैं यहां पर। कई बार लोग ये पूछते हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण वृंदावन में प्रकट हुए तो फिर लोग ये पूछते हैं कि उनका नामकरण जब किया गया, कृष्ण उनका नाम रखा गया, तो इसका मतलब है कि नामकरण संस्कार के पहले कोई कृष्ण नहीं थे, क्योंकि नाम दिया गया उसी समय उनको नाम दिया गया। तो कृष्ण भगवान के जन्म के पहले कृष्ण भक्त कैसे हो सकते थे? लेकिन कृष्ण भगवान तो केवल एक लीला के तौर से प्रकट हुए हैं। कृष्ण तो हमेशा रहते हैं उनके धाम में, जो इस भौतिक जगत के बहुत दूर है, बहुत परे है। बीच बीच में समय समय पर भगवान आते हैं और लीला करते हैं, ऐसे लगता है कि उन्होंने जन्म लिया है। फिर उनका नामकरण संस्कार होता है, फिर वे दूध पीना शुरू करते हैं, फिर अन्न प्राशन संस्कार उनका होता है, अन्न खाना शुरू करते हैं, फिर आगे चल के बाल लीला करते हैं, विवाह करते हैं आगे युवा अवस्था में इत्यादि। भगवान श्री कृष्ण तो हमेशा भगवान थे और रहेंगे, केवल बीच में जब पृथ्वी में आते हैं तो ये सारे नामकरण लीला इत्यादि सब हो जाते हैं। तो ठीक उसी तरह से प्रभु रामचंद्र जी जब त्रेता युग में प्रकट हुए, इसका मतलब ये नहीं है कि त्रेता युग के पहले रामचंद्र नहीं थे, अपने धाम में तो हमेशा है। एक कथा आती है कि त्रेता युग में रामचंद्र भगवान जब अयोध्या में निवास करते थे तो वहां पे एक ब्राह्मण रहा करते थे। आप तो जानते हैं कि उस समय राम राज्य था, राम राज्य में सभी लोग, सारी प्रजा भगवान के भक्त थे। सभी सारी प्रजा प्रभु रामचंद्र जी से अपने प्राण से भी ज्यादा प्रेम करते थे। यह है राम राज्य। आजकल हम राम राज्य लाने का प्रयत्न कर रहे हैं लेकिन बिना प्रभु रामचंद्र के, अर्थात हम सुख शांति आनंद सुविधा इत्यादि समाज में लाना चाहते हैं लेकिन भगवत भक्ति के बिना यह संभव नहीं है। तो ये ब्राह्मण, इन्होंने एक व्रत लिया था और वो व्रत ये था कि जब तक वो भगवान का दर्शन नहीं करते प्रतिदिन, वो उपवास रखते, भोजन नहीं खाते। प्रभु रामचंद्र अपनी प्रजा को दर्शन करने के लिए एक अमुक समय पर हमेशा बाहर आते और कोई भी प्रजा में से उनको मिलने के लिए जा सकता था। उनके दरबार के दरवाजे हमेशा खुले हुआ करते थे। तो ये ब्राह्मण जिसने ऐसे व्रत लिया, उनको बहुत कठिनाई होती थी। क्यों? क्योंकि कई बार प्रभु रामचंद्र अयोध्या के बाहर जाते थे किसी काम से, और जब वो बाहर जाते तो इस ब्राह्मण को भगवान राम का दर्शन नहीं होता, और फिर कभी दो दिन कभी चार दिन वो उपवास रखते क्योंकि भगवान का दर्शन नहीं किया। तो प्रभु रामचंद्र जी को जब पता चला तो उनके हृदय में करुणा जागृत हुई। उन्होंने अपनी ही मूर्तियां उस ब्राह्मण को दे दिए और वही ब्राह्मण ये पुरातन काल की मूर्तियां जो रामचंद्र के पूर्वज भी पूजा करते थे, वही मूर्तियां उन्होंने उस ब्राह्मण को दी और कहा कि मैं अयोध्या में रहूं या न रहूं, मैं तुम्हारे पास हमेशा रहूंगा मेरे मूर्ति रूप में। इसलिए हर रोज सुबह मेरी मूर्ति रूप में तुम सेवा करो, मुझे भोग चढ़ाओ, अभिषेक करो और फिर तुम प्रसाद ले लो। तो मेरी अयोध्या में रहने या ना रहने से तुम्हें अब कष्ट नहीं होगा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि प्रभु रामचंद्र के समय भी उनकी मूर्ति और कई सालों पहले से विद्यमान थी,
मतलब उनके आने के पहले से भी लोग राम भक्त थे, ये भविष्यवाणी भी हुई थी कि प्रभु राम आने वाले हैं। तो इस तरह से हमें जानना चाहिए कि श्री राम, श्री कृष्ण और अन्य अवतार समय समय पर बार बार यहां प्रकट होते हैं और ये ऐतिहासिक सत्य घटनाएं हैं, इनके ऊपर हमें पूरी श्रद्धा रखनी चाहिए। वैसे आजकल लोगों को धन चाहिए, लोगों को ऐश्वर्य चाहिए, लक्ष्मी देवी की कृपा वो चाहते हैं, लेकिन नारायण के बिना ये कैसे संभव है? लोगों को चाहिए लक्ष्मी देवी, सीता देवी, लेकिन राम के बिना संभव नहीं है। अगर हम प्रभु रामचंद्र जी के भक्त हुए तो सीता देवी की, लक्ष्मी देवी की कृपा खुद ब खुद प्राप्त हो जाएगी। जो लोग असुरी प्रवृत्ति के होते हैं, जो लोग भगवान की भक्ति नहीं करना चाहते हैं, वो असुरी प्रवृत्ति के होते हैं, वो केवल भगवान की शक्ति का भोग करना चाहते हैं, जैसे कि रावण ने किया था। इस संदर्भ में चैतन्य महाप्रभु की एक लीला है। चैतन्य महाप्रभु ने जब संन्यास लिया तो दक्षिण भारत में वो यात्रा करने गए। इस दौरान वो दक्षिण मथुरा में पहुंचे, जो आज मदुरई नाम के शहर से जाना जाता है। वहां पे उनकी मुलाकात एक ब्राह्मण से हुई। वे ब्राह्मण बड़े शुद्ध राम भक्त थे। उनका नाम था रामदास विप्र। और रामदास विप्र ने जब चैतन्य महाप्रभु का दर्शन किया तो उनको अपने घर में बुलाया प्रसाद के लिए, भोजन के लिए। जब प्रभु रामचंद्र जी पहुंचे उनके घर में 12 बजे दोपहर को प्रसाद लेने के लिए, तो उन्होंने देखा कि न तो प्रसाद बना है और न ही वो ब्राह्मण प्रसाद बनाने की तैयारी में है। तो प्रभु रामचंद्र जी ने पूछा, प्रभु चैतन्य महाप्रभु ने पूछा कि हे रामदास विप्र, आपने तो मुझे भोजन के लिए बुलाया लेकिन आपने तो कुछ तैयारी नहीं की, क्या बात है? उस समय रामदास विप्र रामलीला में बिल्कुल भाव विभोर हो गए थे, प्रेमावेश में, उसी भाव में वो थे। और वो कहने लगे कि हम तो जंगल में रह रहे हैं, जंगल में जब तक लक्ष्मण जड़ी बूटियां और कंदमूल लेकर नहीं आते हम कैसे खाएंगे? जब लक्ष्मण ले आएगा फिर सीता वो भोजन पकाएगी, जो भी कुछ मिलेगा तब हम भोजन ग्रहण कर सकते हैं। तो उस भाव में थे वो, इसलिए उनको समय का पता नहीं चला कि मैंने चैतन्य महाप्रभु को बुलाया है, उनको भोजन खिलाना है, कुछ पता नहीं चला। चैतन्य महाप्रभु ने उनके भाव को देखा और बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने आलिंगन किया उस ब्राह्मण को और कहा, ये ठीक है हम प्रतीक्षा करेंगे, लेकिन ये तो बताना कि आप इतने दुखी क्यों हो? आपके चेहरे को देखने से पता चलता है कि आपके हृदय में कोई बहुत बड़ी वेदना है, आप बहुत व्याकुल दिखाई पड़ रहे हैं, क्या बात है? तो रामदास विप्र कहने लगे, मुझे मालूम पड़ा है, क्योंकि उसी भाव में थे तो उस भाव में बोल रहे थे, कि रावण जो कि बहुत दुष्ट आदमी है, राक्षस है, उसने प्रभु रामचंद्र के पत्नी को सीता देवी का अपहरण कर लिया है। मैं ये सोच के हैरान हूं, इतना दुखी हो गया हूं कि रावण जैसे दुष्ट आदमी ने सीता देवी का स्पर्श कैसे किया, कैसे उसका अपहरण कर लिया। तो ये बात मुझे बहुत दुख दे रही है और इसलिए मेरा मन कहीं और नहीं लग रहा है। तो चैतन्य महाप्रभु ने रामदास विप्र को बड़े प्रेम से समझाया और कहने लगे कि अरे विप्र, जरा सुनो, ये जान लो कि सीता देवी कोई साधारण इस संसार की महिला नहीं है, वो तो साक्षात लक्ष्मी के रूप है, और श्री राम ये तो स्वयं भगवान है। जिस तरह से श्री रामचंद्र का रूप सच्चिदानंद रूप है, उसी तरह से सीता देवी का रूप भी सच्चिदानंद रूप है, आध्यात्मिक है। और जो सीता देवी का असली आध्यात्मिक रूप है, वो कोई भी भौतिक आदमी छू नहीं सकता। जिसके हृदय में शुद्ध भक्ति नहीं है, छूने की बात दूर है, वो सीता देवी के असली आदि रूप को देख भी नहीं सकता है। तो वो कैसे हो सकता है कि रावण ने असली सीता का अपहरण किया हुआ होगा? ये संभव नहीं है। तो जान लो हे रामदास विप्र कि जिस सीता का अपहरण रावण ने किया था, वो नकली सीता थी, माया सीता, भगवान की माया शक्ति का रूप। जो असली सीता थी, वो हमेशा रावण जैसे दुष्ट लोगों से दूर रहती है। रावण जैसे लोग उनका स्पर्श कभी भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए तुम्हारे मन को तुम शांत करो। रामदास विप्र को चैतन्य महाप्रभु में बहुत श्रद्धा थी, इसलिए उन्होंने चैतन्य महाप्रभु की बात मान ली, मन को शांत किया और फिर जल्दी से भोजन पकाना आरंभ किया। और फिर 12 बजे दोपहर के बजाय चैतन्य महाप्रभु ने 3 बजे दोपहर को प्रसाद लिया, क्योंकि वो ब्राह्मण इतने भाव विभोर हो गए थे। और फिर चैतन्य महाप्रभु और दक्षिण भारत की यात्रा में आगे दक्षिण में चल पड़े। चलते चलते काफी समय के बाद में वो सेतु बंध में पहुंचे, रामेश्वर। वहां पर जब वो मंदिर में गए तो उन्होंने देखा कि वहां के ब्राह्मण वो एक ग्रंथ के ऊपर चर्चा कर रहे थे। वो जाके उनके पास में बैठे तो उनको पता चला कि ये कूर्म पुराण ग्रंथ है, और कूर्म पुराण के जो पत्र हैं वो पत्तों पर लिखे हुए हैं, वो मूल पत्ते हैं पहले के जो थे। और जब उन्होंने वो कूर्म पुराण के थोड़े अध्याय पढ़े, क्योंकि इस कूर्म पुराण में बताया गया था कि किस तरह से सीता देवी का रूप जो कि रावण ने अपहरण किया, वो मिथ्या रूप था। कूर्म पुराण में ये कथा बताई गई थी जो इस प्रकार है कि जब सीता देवी जो कि श्री राम की प्रतीक्षा कर रही थी उनकी पर्ण कुटिया में, वो राह देख रही थी कि श्री राम अभी उस सुवर्ण मृग को लेकर आने वाले हैं, और अचानक वहां पर रावण आ गया। जब रावण आया और जैसे ही सीता ने रावण को देखा तो तुरंत अग्निदेव वहां पर आए, क्योंकि सारे देवता भी भगवान के भक्त होते हैं और वे भी भगवान की लीला में सहायता करते हैं। इसलिए अलग अलग रूपों में सारे देवता भी जन्म लेते हैं और उनकी सहायता करते हैं। तो अग्निदेव ने असली सीता को स्वीकार कर लिया और दुर्गा देवी के पास ले गए, उनके घर में ले गए। अन्य शास्त्र में बताया है कि उनको उन्होंने अपने ही लोक में लेकर वहां पर रखा, और नकली सीता या माया सीता का रूप उन्होंने प्रकट किया। और ये जो माया सीता का रूप है, इसको रावण ने अपहरण किया और फिर वो ले गए लंका। तो इस प्रकार से जब ये पढ़ा चैतन्य महाप्रभु ने तो उनको बहुत अच्छा लगा, रामदास विप्र का स्मरण आया उनको। और आगे उन्होंने पढ़ा कि जब सीता देवी की अग्नि परीक्षा हुई, जब प्रभु रामचंद्र जी के सामने सीता देवी को सिद्ध करना पड़ा कि उनकी पवित्रता है, तो अग्नि परीक्षा के समय अग्निदेव ने फिर से असली सीता को अग्नि के माध्यम से प्रकट किया और नकली सीता को वापस अग्नि में ले लिया। इस तरह से अग्नि परीक्षा के बाद में जो असली सीता थी वो बाहर आई, और जो माया की सीता थी वो वापस अग्नि में चली गई। तो ये जब चैतन्य महाप्रभु ने सुना, बड़े खुश हुए और काफी यात्रा करके फिर से आ रहे थे उसी मार्ग से, और दक्षिण मथुरा या मदुराई में फिर से रुके और रामदास विप्र के घर में आए, और उन्होंने वहां के ब्राह्मणों से, रामेश्वर के ब्राह्मणों से निवेदन करके कुर्म पुराण के वही असली पन्ने लेकर आए थे, उसकी प्रति नहीं बनाए थे, क्योंकि वो चाहते थे कि रामदास विप्र को श्रद्धा इस बात में दिलाने के लिए जो मूल बात है, जो मूल पन्ना है, वही दिखाना चाहिए। प्रति दिखाएंगे तो शायद उनके मन में संशय भी हो सकता है। तो उन्होंने प्रतियां निकाली और वो प्रतियां जो है वो रामेश्वर में रखी, और जो आदि पन्ने थे वही लेकर वो यहां पर आए, रामदास विप्र को दिखाया। रामदास विप्र ने पढ़े वो पन्ने, वो श्लोक महाप्रभु ने उनको समझाया, और रामदास विप्र बड़े प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा कि आज मेरी सारी वेदना खत्म हो गई, अब मेरे हृदय में कोई दुख नहीं है। पिछली बार जब आप आए थे, मैं आपकी सेवा अच्छी तरह से नहीं कर पाया क्योंकि मैं बहुत दुखी था, लेकिन अब मैंने सच्चे सुख की प्राप्ति कर ली है। अब मैं आपके लिए बहुत अच्छा प्रसाद, अच्छा दावत बनाता हूं। फिर बड़े खुशी से चैतन्य महाप्रभु ने भी रामदास विप्र की यहां प्रसाद ग्रहण किया, और फिर वहां से आगे अपनी यात्रा में चल पड़े। इससे हम देख सकते हैं कि वास्तव में रावण या रावण के प्रवृत्ति के लोग कभी भी सीता देवी या लक्ष्मी देवी के पास नहीं जा सकते हैं। जो व्यक्ति सीता या लक्ष्मी को चाहता है बिना राम या नारायण के, वो सीता या लक्ष्मी का आलिंगन नहीं करेगा बल्कि दुर्गा देवी का, क्योंकि दुर्गा देवी जो है वो लक्ष्मी देवी के विस्तारित रूप हैं और उनके प्रतिबिंब के समान हैं, और उनका काम होता है इस भौतिक जगत में सभी को दंड देना। दुर्गा देवी के हाथों में त्रिशूल रहता है, आपने देखा होगा दुर्गा देवी का कोई चित्र, कोई मूर्ति अगर आपने देखी हो तो आपने देखा होगा यह त्रिशूल है। यह त्रिशूल क्या है? यह त्रिशूल है ये तीन प्रकार के दुख जो हर प्राणी को भुगतने पड़ते हैं ये भौतिक जगत में। आध्यात्मिक क्लेश जो मन और शरीर के ऊपर हमें मिलता है, आधिदैविक क्लेश जो देवताओं के माध्यम से प्रकृति से हमें मिलता है, आधिभौतिक क्लेश जो कि दूसरे प्राणियों के माध्यम से हमें मिलता है। तो दुर्गा देवी की सेवा भगवान के लिए ये है कि वो हमेशा ये तीन प्रकार के कष्ट सारे प्राणियों को देते रहते हैं। तो दुर्गा देवी का आलिंगन करने का मतलब है मृत्यु का आलिंगन करना, कष्ट का आलिंगन करना, क्योंकि इस भौतिक जगत में रहना इसका मतलब है जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र में अटक के रह जाना। इस प्रकार से रावण की प्रवृत्ति है कि भगवान की भक्ति नहीं करना, केवल भगवान के संपत्ति का भोग करना। तो उसी प्रकार से संसार में जो लोग भगवान की भक्ति नहीं करना चाहते हैं, जो केवल भोग करना चाहते हैं, वो भी रावण की तरह हैं। इसलिए रावण को इतना बड़ा असुर माना जाता है। अगर श्री रामचंद्र मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, एक हमारे लिए आदर्श हैं कि हमें क्या बनना चाहिए, हमें कैसे रहना चाहिए, तो रावण इसके बिल्कुल विपरीत हैं। क्या हमें नहीं बनना चाहिए वो रावण के चरित्र से हमें दिखाई पड़ता है, और क्या बनना चाहिए वो श्री रामचंद्र के चरित्र से हमें सीखने में आता है। तो प्रश्न ये होता है कि अगर रावण इतने शक्तिशाली थे कि सारे देवी देवता भी उनसे घबराते थे, तो फिर भगवान श्री राम के साथ में जो वानर सेना थी उन्होंने विजय कैसे प्राप्त किया? क्योंकि ये वानर सेना अगर देखा जाए तो उनके पास कोई अस्त्र शस्त्र नहीं थे। वानर सेना के अस्त्र क्या थे? पत्थर, पहाड़, पेड़, नाखून, दांत, मुट्ठी, ये उनके अस्त्र। और रावण के सेना के पास क्या था? सबसे बेहतरीन जो अस्त्र हैं, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के उस समय के,
अलग अलग मंत्रों से तंत्रों से जो उत्पन्न किए जाते थे, भयंकर से भयंकर अस्त्र शस्त्र थे उनके पास, अलग अलग देवी देवताओं से उन्होंने वरदान प्राप्त किए थे और उनके पास बड़े बड़े योद्धा थे जैसे कि कुंभकर्ण, इंद्रजीत इत्यादि, इतने शक्तिशाली थे ये। और ऐसे हजारों की संख्या में ऐसे बड़े योद्धा थे और बहुत सारे अस्त्र शस्त्र थे। उधर वानर सेना, हालांकि ये देवता के अंश थे, फिर भी उनके पास कोई वैसे खास अस्त्र नहीं थे, लेकिन फिर भी उन्होंने रावण को और रावण की सेना को हरा दिया। क्यों, ऐसे क्यों हुआ, ये बहुत सोचने वाली बात है। सबसे पहली बात तो ये है कि वानर सेना इसलिए जीत गई क्योंकि भगवान उनके पक्ष में थे, प्रभु रामचंद्र जी उनके साथ में थे। महाभारत की लीला में भी हम यही देखते हैं, जब दुर्योधन और अर्जुन दोनों भगवान कृष्ण के पास गए द्वारका में, दुर्योधन चाहते थे कि कृष्ण भगवान की सेना उनको मिल जाए और अर्जुन चाहते थे कि उनको कृष्ण मिल जाए, और जब दोनों पहुंचे और कृष्ण भगवान उस समय विश्राम कर रहे थे, अर्जुन जाके सीधे उनके चरण कमलों के पास बैठे, दुर्योधन जाके कृष्ण के मुखारविंद के पास में बैठे। जब कृष्ण नींद से जागे तो उन्होंने अर्जुन को पहले देखा और पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए, क्यों आए हो मेरे पास। दुर्योधन ने कहा, नहीं, मुझे पहले आपको संधि देनी चाहिए पूछने के लिए, क्योंकि मैं पहले आया। लेकिन कृष्ण भगवान कहने लगे, पहले तो आए होगे लेकिन मैंने देखा पहले अर्जुन को, तो अर्जुन मांगो तो तुम मुझे प्राप्त कर सकते हो, मैं तुम्हारे साथ में रहूंगा युद्ध में, लेकिन शर्त यह है कि मैं अस्त्र उठाऊंगा नहीं, या तो फिर मेरी नारायण सेना को लेना तुम। तो बिना हिचकिचाए हुए अर्जुन ने कहा, मुझे आप चाहिए, आपकी सेना से मुझे कुछ लेना देना नहीं, आप अस्त्र उठाएंगे नहीं भी मुझे चलेगा, केवल आप मेरे साथ में रहो। तुरंत श्री कृष्ण ने हां कह दिया। कृष्ण भगवान ने इस बात को सुनकर उनको बहुत प्रसन्नता हुई और दुर्योधन भी प्रसन्न हुए। मन ही मन सोचने लगे, कितना मूर्ख है अर्जुन, इतनी बड़ी सेना है, इतने अक्षौहिणी वर्ग हैं, महान महान योद्धा है, सेना मांगने के बजाय अकेले कृष्ण को मांगा है, वो भी बिना अस्त्र के। तो फिर खुशी से दुर्योधन ने कहा, मुझे आपकी नारायण सेना चाहिए। तो सेना उनको मिल गई, लेकिन जीत अंत में किसका हुआ, जीत अर्जुन की हुई, पांडवों की हुई। क्यों, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन और पांडवों के साथ में थे। कौरवों के साथ में 11 अक्षौहिणी वर्ग थे सेना के, और पांडवों के साथ केवल 7 अक्षौहिणी वर्ग थे। पांडव कौरवों के पक्ष में भीष्म देव, द्रोणाचार्य, कर्ण, कृपाचार्य ऐसे महान महान योद्धा थे जिनका सामना करना असंभव था, हराने की बात तो दूर है। और पांडवों के पक्ष में थे तो सही, लेकिन केवल अर्जुन और थोड़े और थे, लेकिन भीष्म देव द्रोणाचार्य जैसे योद्धा कौन थे, वहां कोई नहीं था, अर्जुन भी नहीं। लेकिन फिर भी पांडवों की जीत हो गई। परीक्षित महाराज श्रीमद् भागवत में कहते हैं कि कौरव सेना वो बड़े बड़े तिमिंगल मछली के बराबर थे। तिमिंगल मतलब इतने बड़े होते हैं जलचर प्राणी, जो कि बड़े बड़े मछलियों को खाने वाले मछलियों को भी खा जाते हैं, इतने बड़े विशाल होते हैं वो। तो परीक्षित महाराज कहने लगे सुखदेव गोस्वामी से कि कौरव सेना में जो बड़े बड़े सेनापति थे, जैसे कि भीष्म, कर्ण इत्यादि, ये बड़े तिमिंगल के समान थे। कुरुक्षेत्र की रणभूमि वो विशाल सागर के समान थी, और पांडव सेना ये छोटे छोटे मछलियों के बराबर थी। लेकिन फिर भी ये छोटे मछली विजयी हो गए। क्यों, इसलिए कि भगवान कृष्ण की कृपा उनके ऊपर थी, इसलिए उनको विजय की प्राप्ति हो गई। कुरुक्षेत्र के युद्ध के अंत में भगवान श्री कृष्ण जो कि अर्जुन के सारथी थे, उन्होंने अर्जुन से कहा, अर्जुन तुम पहले उतरो। अर्जुन ने कहा, नहीं नहीं कृष्ण तुम उतरो पहले। कृष्ण ने कहा, नहीं मेरी बात मानो, तुम उतरो। जब अर्जुन उतर गए उसके बाद कृष्ण उतरे, और जैसे ही श्री कृष्ण रथ से उतरे तो वो रथ भस्म हो गया और अर्जुन को पता चल गया कि इसका मतलब यह है कि मेरे रथ को और मुझको बहुत पहले भस्म होना चाहिए था, लेकिन केवल श्री कृष्ण मेरे रथ के ऊपर थे, मेरे साथ में थे, इसलिए हम टिके, हम टिक पाए, हम बच पाए, नहीं तो कब की हमारी मृत्यु होने वाली थी। इसलिए भगवद गीता का आखिरी श्लोक यही है जो संजय बताते हैं, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धर तत्र श्री विजयो भूति ध्रुवा नीतिर मतिर मम। संजय कहते हैं कि हे धृतराष्ट्र, मेरा निर्णय मेरा मत ये है कि जहां योगेश्वर श्री कृष्ण उपस्थित हैं और जहां धनुर्धर अर्जुन उनके साथ में है, वहां ऐश्वर्य, विजय, धार्मिकता, नैतिकता इत्यादि अवश्य विद्यमान होंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। और अर्जुन के रथ के ध्वज के ऊपर हनुमान जी का चिन्ह था, तो हनुमान जी तो थे ही, और साथ साथ में वही हनुमान जी के पूज्य आराध्य देव श्री रामचंद्र अभी श्री कृष्ण के रूप में रथ पे खड़े थे, तो हनुमान भी थे राम भी थे, डबल फायदा हो गया अर्जुन को। तो इस प्रकार से अर्जुन और पांडवों की जीत निश्चित थी। तो ठीक उसी तरह से वानर सेना भौतिक दृष्टि से देखा जाए तो बहुत कमजोर थे, उनके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन फिर भी क्योंकि प्रभु श्री रामचंद्र उनके साथ में थे, इसलिए उनको विजय की प्राप्ति हो गई, सबसे बड़ी बात है। तो इससे हम ये सीख सकते हैं कि जो लोग भगवान को अपने पक्ष में लेते हैं वो लोग हमेशा अंत में विजय प्राप्त करेंगे। लेकिन इसका मतलब क्या है? ऐसे आजकल के आधुनिक इतिहास में भी देखा जाता है कि दो देश होते हैं, एक ही धर्म का पालन करते हैं और दोनों आपस में झगड़ते हैं और दोनों उसी भगवान को अपने पक्ष में लेने का प्रयास करते हैं। दोनों कहते हैं कि भगवान हमारे पक्ष में है, तो भगवान किसके पक्ष में है? असलियत में तो भगवान दोनों के ही पक्ष में नहीं है, क्योंकि उनका जो युद्ध है उसमें भगवान का कुछ संबंध ही नहीं है, वो तो केवल एक अहंकार और अज्ञान का युद्ध है। जब हम कहते हैं कि भगवान को हमारे पक्ष में लेना है, इसका मतलब यह है कि हमें भगवान के आदेश का पालन करना चाहिए, भगवान की सेवा करनी चाहिए, उनकी भक्ति करनी चाहिए, उनके प्रति हमारे हृदय में प्रेम भावना रखनी चाहिए, और यही प्रेम दृष्टि हमें संसार के सारे प्राणियों के प्रति होनी चाहिए। हमारे अंदर हम कह सकते हैं कि भगवान हमारे पक्ष में है, हमें संसार को त्यागने के लिए तैयार होना चाहिए भगवान को, भगवान के लिए। तो इस प्रकार से वानर सेना इनकी जीत हो गई, क्योंकि उनके साथ में भगवान थे। इसलिए रावण, हालांकि इतने वरदान उन्होंने प्राप्त किए थे कि हमें कोई देवता नहीं मारेंगे, कोई नाग किन्नर यक्ष इत्यादि नहीं मारेंगे, हमें पशु भी नहीं मारेंगे इत्यादि, लेकिन उन्होंने एक वरदान नहीं मांगा। उन्होंने ये नहीं पूछा कि मुझे मनुष्यों से रक्षा कीजिए, क्योंकि उन्होंने सोचा कि जब मैंने गंधर्वों से, देवताओं से, यक्ष नागों से मैंने सुरक्षा प्राप्त कर ली है, तो मनुष्य कौन है उनके सामने? मनुष्य तो तुच्छ है, उनकी शक्ति तो कुछ भी नहीं है इन देव दानवों के तुलना से। तो जब देव दानवों से मैं सुरक्षित हूं तो मनुष्यों की क्या चिंता करनी है? लेकिन उनको यह नहीं मालूम था कि अगर वो शेर है तो भगवान सवा शेर। तो भगवान ने रामचंद्र का अवतार लिया मनुष्य समाज में, और क्योंकि ब्रह्मा जी ने वरदान जो रावण को दिया था वो मनुष्यों के संबंध में नहीं दिया था, इसलिए श्री राम वहां आकर उन्होंने वानरों की सहायता ली और रावण का वध कर दिया। और एक कारण क्या है कि वानर सेना रावण को परास्त कर सकी, वो ये है कि भौतिक शक्ति भले वानरों के साथ में नहीं थी लेकिन आध्यात्मिक शक्ति थी। रावण के पास केवल भौतिक शक्ति थी। कौन सा ज्यादा शक्तिशाली है, आध्यात्मिक शक्ति या भौतिक शक्ति? आध्यात्मिक शक्ति। आध्यात्मिक शक्ति ही ज्यादा शक्तिशाली है और इसलिए हम देखते हैं कि भगवान अपने भक्तों को इतनी आध्यात्मिक शक्ति दे देते हैं कि वो अद्भुत से अद्भुत कार्य कर बैठते हैं। और जब भगवान अवतार लेकर पृथ्वी लोक में आते हैं तो वो अपने भक्तों का ही आश्रय लेते हैं, अपने भक्तों की ही सहायता करते हैं और ऐसे लगता है कि उनके भक्त ऐसे कार्य संपन्न कर पा रहे हैं जो स्वयं भगवान नहीं कर पा रहे हैं। कोई उदाहरण देख सकते हैं आप रामलीला में? कौन सा उदाहरण? हनुमान जी। बहुत अच्छा। हनुमान जी जब सीता देवी को खोज रहे थे श्री रामचंद्र के आदेश के अनुसार, हनुमान जी सीता देवी को खोज पाए, श्री राम नहीं खोज पाए। श्री राम को जब लंका जाना पड़ा तो कैसे गए वो? उनको क्या करना पड़ा? एक सेतु बांधना पड़ा, ब्रिज बांधना पड़ा उनको सागर के ऊपर और फिर वो जा पाए। लेकिन हनुमान जी को जब लंका जाना पड़ा वो कैसे गए? वो तो सीधे छलांग मार कर गए। उनको कोई ब्रिज व्रिज सेतु वेतु की आवश्यकता नहीं थी, केवल पर्वत के ऊपर खड़े हो गए, खड़े होकर अपना सांस ले लिया, अपनी शक्ति को एकत्र कर लिया, एक विशाल रूप धारण किया हनुमान जी ने और छलांग मारी। जैसे छलांग मारी तो ऐसे मारे कि साथ में उसके प्रभाव से सारे पेड़ पहाड़ उनके साथ साथ निकल पड़े और सारे समुद्र में सब इधर उधर फैल गए। एक तूफान हो गया हनुमान जी जब ऊपर उतरे, जैसे कि कोई हवाई जहाज ऊपर चढ़ता है तो कितनी हवा जैसी आ जाती है, तो हनुमान जी भी एक ऐसे जहाज की तरह ऊपर चल पड़े। तो इससे हम क्या जान सकते हैं कि हनुमान जी के अंदर जो शक्ति थी वो रामचंद्र जी में नहीं थी? क्या इसका मतलब यह है? एक दृश्य से देखा जाए तो वो सही है, क्योंकि श्री रामचंद्र एक मनुष्य की लीला कर रहे थे तो मनुष्य में ऐसी योग्यता नहीं होती कि समुद्र के ऊपर कूद के चले जाए, लेकिन ये वानर थे, लेकिन साधारण वानर नहीं, देवताओं के अंश थे, इसलिए हनुमान को समुद्र के पार करना कूद के कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। लेकिन अंततः हमें जानना चाहिए कि हनुमान जी को शक्ति देने वाले श्री रामचंद्र ही थे, क्योंकि हनुमान जी उनके शुद्ध भक्त थे तो प्रभु रामचंद्र जी ने उनको सब कुछ दे दिया। ये है भगवान का स्वभाव। जब वो देखते हैं कि कोई व्यक्ति उनका भक्त बन गया है, उनके शरण में आ गया है, तो प्रभु रामचंद्र उस व्यक्ति को सब कुछ दे देते हैं, सारे प्रकार के ऐश्वर्य शक्ति सब प्रदान करते हैं। ये है भगवान का स्वभाव। तो इस तरह से हम जान सकते हैं कि वानर सेना के पास आध्यात्मिक शक्ति था जो कि रावण के पास नहीं था, भौतिक शक्ति। इसलिए हमें इस बात की तीव्र श्रद्धा होनी चाहिए कि अंत में आध्यात्मिक शक्ति की जीत ही होने वाली है। हम देखते हैं कि आजकल कितना अत्याचार अन्याय क्या नहीं हो रहा है, कितना खून खराबा झगड़े कितने हो रहे हैं, और जो वास्तव में भगवान के भक्त हैं वो कितने कम हैं। लेकिन फिर भी हमें चैतन्य महाप्रभु के भविष्यवाणी में श्रद्धा रखनी चाहिए कि अगर हम हमारे भक्ति मार्ग में सिंसियर रहेंगे, हृदय से हम भक्ति करते रहेंगे तो भक्तों का विजय अंत में होगा ही। आजकल समाज में ऐसी परिस्थिति है कि लोग सोचते हैं कि कोई ज्यादा अगर भक्ति कर रहा हो तो वो पागल व्यक्ति है, अपने समय को बर्बाद कर रहा है, टीवी नहीं देखता, सिनेमा नहीं देखता, होटल में नहीं जाता है, और तरह के ऐश और मजा नहीं करता तो फिर जीवन में रहा क्या करने के लिए, फिर क्यों कमाते हो, क्यों जीते हो, ऐसा ये अभक्त लोग पूछते हैं। लेकिन वो नहीं जानते कि भगवान की भक्ति में कितना आनंद है, और वो ये नहीं जानते कि भगवान की भक्ति करने से हमारे सारे समस्याओं का समाधान हमेशा के लिए हो जाएगा, लेकिन ये ज्ञान उनको नहीं है। इसलिए वो लोग इतने प्रकार के अपराध कर बैठते हैं भक्तों के प्रति भी और अन्य प्राणियों के प्रति भी, केवल ठीक रावण की तरह लोगों के प्रति अपराध किया था। प्रभु रामचंद्र जी के प्रति अपराध तो किया ही था और उसका फल तो उनको मिलना ही था कि प्रति अपराध किया था और उनको ढेर सारे श्राप मिले थे। तो इन श्राप मिलने की वजह से रावण की हार निश्चित थी। एक बार ऐसे हुआ कि रावण जो कि जिसका नाम पहले था दशग्रीव, मतलब जिसके 10 गर्दन 10 सर हैं, उसको ब्रह्मा जी के वरदान जब मिल गए तो वो इतना शक्तिशाली हो गया कि सारे ब्रह्मांड में घूमकर सबके साथ युद्ध करता था, सारे राजाओं को जाकर युद्ध में ललकारता था ब्रह्मांड भर में, और सबको अपमानित करके उनको हरा डालता था और उनके स्वाभिमान को चूर चूर करके छोड़ देता था। और जब आदमी को इतना अहंकार हो जाता है तो फिर वो आगे पीछे नहीं देखता, पाप कर बैठता है, गलत काम कर बैठता है। तो रावण क्या करता कि कई बार इधर उधर जाते जाते जब भी वो कोई तरुण महिलाओं को देखता उनको उठा लेता, बलात्कार कर देता, अपहरण कर देता। और ये जो बहुत ही धर्मपरायण जो महिलाएं हुआ करती थी वो उनको हृदय से रावण को श्राप देती कि हम तुमको श्राप दे रहे हैं कि एक महिला की वजह से ही तुम्हारा नाश होने वाला है। और एक बार ऐसे भी हुआ कि दशग्रीव, जिसका नाम बाद में रावण हुआ, रावण मतलब जो दूसरों को रुलाता है इसलिए नाम आ गया रावण, पिता ने नाम दिया था कुछ और लेकिन अपने कार्यों से नाम आ गया रावण, मतलब रावण से ही हम समझ सकते हैं कि उसके कार्य उसका स्वभाव कैसा था। तो एक बार रावण जिसकी 20 भुजाएं थीं, उसको लग रहा था कि बहुत दिन हुए किसी से युद्ध नहीं किया, कोई हमारे सामने युद्ध करने के लिए प्रतिद्वंद्वी नहीं है, कोई हमारे सामने टक्कर लेने के लिए योग्य नहीं है। तो क्या करते, इधर उधर जाके कुछ पहाड़ उखाड़ डालते, कुछ ना कुछ करते, क्योंकि उनकी शक्ति इतनी थी शरीर में। तो कैलाश पर्वत के पास गए जहां शिवजी पार्वती देवी के पास के साथ में निवास करते हैं। दशग्रीव को अच्छी तरह से मालूम था कि शिवजी ऊपर रहते हैं, जानबूझकर अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए उन्होंने कैलाश पर्वत को उठाया, उखाड़ दिया जमीन से, और जैसे उखाड़ा शिवजी को आश्चर्य हुआ, सब हिलने लगा। शिवजी देखने के, अरे क्या हो रहा है, शिवजी ध्यान में बैठे थे, उन्होंने सोचा अपनी योग सिद्धि से जान लिया कि ये रावण की हरकत है। तो शिवजी ने कहा अब इसको सबक सिखाना चाहिए। तो शिवजी ने केवल अपने चरणों के अंगूठी से पर्वत को दबाया, छोटा सा, बस थोड़ा सा दबाया, जैसे दबाया इतना भारी वजन आ गया कि प्राय रावण के बीसों के बीसों हाथ टूटने लग रहे थे। तब रावण ने शिवजी का शरण लिया, बचाइए, मेरी से बहुत गलती हो गई, क्षमा कीजिए। शिवजी आशुतोष हैं, बड़े दयालु हैं, उन्होंने तुरंत क्षमा कर दी, ठीक है आइंदा ऐसे मत करना। शिवजी का स्वभाव ऐसे है लेकिन पार्वती देवी का स्वभाव ऐसा नहीं है। पार्वती देवी बहुत जल्दी गुस्सा भी हो जाती है और गुस्से को रखती है साथ में और श्राप भी दे देती है। तो पार्वती देवी ने देखा कि तुमने, तुम्हारी ये मजाल हुई, ये साहस हुआ कि शिवजी के स्थान को आकर तुमने इस प्रकार से ये हरकत की, तो मैं तुम्हें श्राप देती हूं कि एक स्त्री की वजह से तुम्हारी हत्या होने वाली है। इस प्रकार से सीता देवी ने भी उनको श्राप दिया था कि एक स्त्री की वजह से तुम्हें श्राप मिलेगा। और एक बार एक ऐसी घटना हुई कि दशग्रीव रावण जब इधर उधर भ्रमण कर रहे थे तो जंगल के ऊपर उड़ते समय अपने पुष्पक विमान में उन्होंने अचानक एक बहुत सुंदर स्त्री को देखा जो कि एक साध्वी के वेश में थी और बाल जटाओं के रूप में था, मृग चर्म पहना हुआ था और वो तपस्या कर रही थी। तो रावण ने देखा कि ये साध्वी है और इतनी तपस्या कर रही है और इतनी सुंदर भी है, तो रावण ने सोचा कि मुझे इस महिला का अपहरण कर लेना चाहिए। जब रावण वहां पर आया तो वो बात करने लगा, कहने लगा कि तुम कौन हो, तुम मेरे साथ में चलो। तो वो महिला कहने लगी कि मेरा नाम वेदवती है और मेरे पिता का नाम था कुशध्वज, जो कि एक ब्रह्म ऋषि थे। जब ब्रह्म ऋषि ने देखा, कुशध्वज ने देखा कि उनकी पुत्री अर्थात मैं इतनी योग्य हूं, मैं साक्षात वेदों की अवतार हूं, तो उन्होंने सोचा कि केवल विष्णु के अलावा और मेरे बेटे के लिए कोई योग्य वर नहीं होगा। अनेक राजा महाराजा देव इत्यादि आते थे मेरे हाथ के लिए विवाह में, लेकिन मेरे पिता ने इनकार कर दिया। एक बार दैत्य राजा आए और उन्होंने मेरे पिता की हत्या कर दी और मेरी माता उन्होंने अपने पिता के साथ में अग्नि में प्रवेश किया अर्थात सती कर दिया, और तब से मैं यहां तपस्या कर रही हूं। और तपस्या के बल पर मुझे यह पता चल गया है कि तुम कौन हो और तुम्हारा यहां आने का इरादा क्या है, इसलिए यहां से चले जाओ, क्योंकि मैं विवाह करूंगी तो केवल विष्णु भगवान से करूंगी। तो जब दशग्रीव ने यह सुना तो तुरंत अपने हाथ को बाहर निकाल के वेदवती के बाल पकड़ लिए। अपनी योग शक्ति से वेदवती ने अपने हाथ को तलवार में परिवर्तित कर दिया और अपने ही बाल काट दिए, जिससे कि वो रावण से मुक्त हो गई और तुरंत एक अग्नि बनाकर अग्नि में प्रवेश कर चुकी। और उसने कहा कि मैं तुम्हें शाप नहीं दूंगी क्योंकि मेरे पुण्य क्षीण हो जाएंगे शाप देने से, इसलिए इस जन्म में मैं तुम्हारे विरुद्ध कुछ नहीं करूंगी, लेकिन इतना मैं अवश्य कहूंगी कि अगले जन्म में मैं तुम्हारे मृत्यु का कारण बनूंगी। और फिर तुरंत कमल पुष्प के ऊपर उसका जन्म हुआ। रावण उस कमल पुष्प को उठाकर ले गए। वहां मंत्रियों ने उपदेशकों ने कहा कि अरे ये अशुभ है आपके लिए, इनको तुरंत फेंक दीजिए जल में। तो रावण ने जल में उस बच्चे को फेंक दिया और फिर अपने शक्ति के द्वारा वही बच्ची जो है आगे जनक महाराज के खेत में आकर पहुंची। जब यज्ञ करते समय, यज्ञ स्थली का उद्घाटन करते समय जनक राजा हल चला रहे थे तो मिट्टी में वहां पर उन्हें यह बच्ची मिली और फिर जनक राजा ने उनका नाम रख दिया सीता। और वास्तव में सीता ही रावण के वध का कारण बनी, क्योंकि अगर रावण सीता देवी का अपहरण नहीं करता तो फिर प्रभु रामचंद्र लंका जाते क्यों और रावण का वध करते क्यों। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि रावण को इतने शाप मिले थे और बहुत सारे शाप मिले थे। एक बार उन्होंने कोई अप्सराओं का अपहरण किया, बलात्कार किया, जैसे कि रंभा नाम की एक अप्सरा थी जो कि कुबेर के पुत्र नल कुबेर की पत्नी थी। जब नल कुबेर को पता चला तो नल कुबेर ने शाप दिया कि अगर आज किसी भी तरह, आज से ये रावण ने किसी भी स्त्री के ऊपर जोर जबरदस्ती करने का प्रयास किया तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। और एक बार भी अनेक और एक अप्सरा पुंजिका स्थली का अपहरण इसी प्रकार से किया और वो रोते हुए ब्रह्मा जी के पास गई और ब्रह्मा जी ने भी उन्हें शाप दिया कि हे दुष्ट राजा रावण, अगर और एक बार तुमने ऐसे जबरदस्ती किया किसी के साथ तो तुम्हारे सर चूर चूर हो जाएगा। तो उसके साथ में उस समय से रावण फिर थोड़े शांत रहे। जब हनुमान जी लंका गए पहली बार और सारे लंका को उन्होंने जला डाला तो उनको थोड़ी बहुत घबराहट होने लगी कि अब क्या होगा, अब हनुमान एक आदमी एक वानर इतना नुकसान कर सकता है, तो सारी सेना आएगी तो क्या होगा। तो इसलिए फिर अपने मंत्रियों का सभा बुलाया। सभा बुलाकर रावण ने झूठ बोला। रावण कहने लगा कि हे मंत्रियों, आप सब मेरे शुभ चिंतक हो। अब वैसे आप जानते हो कि मैं सीता को यहां ले आया और सीता ने मुझे एक साल का समय दिया है। सीता ने कहा है कि एक साल के अंदर अगर श्री राम यह लंका में आएंगे तो ठीक है, नहीं तो एक साल के बाद वो मेरी पत्नी बनने के लिए तैयार होगी। वास्तव में झूठ था, लेकिन रावण जानते थे कि हो सकता है कोई उनके मंत्रियों में से उनको टोके। कुंभकर्ण ने उनको टोका। कुंभकर्ण ने कहा कि अरे आपने कितनी बड़ी मूर्खता की, आपने हमें पूछ के क्यों नहीं किया ऐसे, अभी आपने इतनी बड़ी गलती कर ली और अब न जाने क्या होगा। लेकिन कोई चिंता नहीं करो, कुंभकर्ण है आपका भाई, मैं रक्षा करूंगा लंका की। लेकिन एक दूसरे मंत्री ने कहा, अरे रावण आपका सामने करने वाला कोई नहीं है सारे ब्रह्मांड में, तो आप सीता के साथ जबरदस्ती क्यों नहीं करते। उस समय रावण ने यह कथा बताई कि ब्रह्मा जी ने मुझे ऐसा शाप दिया था। तो इस प्रकार से रावण के ऊपर कई शाप थे। एक बार बहुत साल पहले रावण जब घूम फिर रहे थे तो अयोध्या के ऊपर उन्होंने आक्रमण किया और श्री राम के एक पूर्वज थे राजा जिनका नाम था अनरण्य, और अनरण्य को उन्होंने रावण ने युद्ध में हरा दिया और उनकी हत्या हो गई अनरण्य की। लेकिन आखिरी क्षणों में अनरण्य ने रावण को शाप दिया, कहा कि तुम इतने दुष्ट हो, जगह जगह जाके केवल उत्पात करते हो, यही तुम्हारा काम है। मैं तुम्हें शाप देता हूं कि हमारे वंश में कई साल बाद एक राजा जन्म लेने वाला है जिसका नाम होगा श्री राम, और वो तुम्हारे मृत्यु का कारण होगा। और एक बार ऐसे हुआ कि श्री राम, क्षमा कीजिए, रावण वो नंदीश्वर के पास से गुजर रहा था। अहंकार की वजह से वो सबका मजाक उड़ाते, सबको छेड़ते, सबके ऊपर आक्रमण करते, तो नंदीश्वर को देखा और नंदीश्वर का मजाक उड़ाया और कहने लगे कि तुम्हारा मुख एक बंदर की तरह दिखता है। तो नंदीश्वर को बड़ा क्रोध आया, तो नंदीश्वर ने शाप दिया रावण को और कहा कि तुम ऐसा बोल रहे कि मैं बंदर की तरह दिखता हूं, तो मैं तुम्हें शाप देता हूं कि वानर ही तुम्हारे मृत्यु का कारण होंगे। और वाकई ऐसे हुआ, फिर वानर सेना आई और वानर सेना ने सारे रावण की सेना को खत्म कर दिया। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि रावण ने इतने बुरे काम किए थे, इतने हजारों लोगों का शाप उनके ऊपर था, अगर हारते नहीं तो और क्या होता। तो इससे हम ये जान सकते हैं कि आदमी कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, कितना भी ऐश्वर्यशाली क्यों न हो, अगर वो रावण की तरह असुरी प्रवृत्ति का है, रावण के पद चिन्हों में चल रहा है, कोई छोटा रावण हो, कोई बड़ा रावण हो, कोई बात नहीं, लेकिन रावण के पद चिन्हों में अगर चल रहा हो तो इसकी ऐश्वर्य, उसकी शक्ति ज्यादा समय टिक नहीं पाएगी, उसका अंत होना ही है। लेकिन अगर हम वानर सेना की तरह रहेंगे जो कि सदा श्री राम के आश्रय में थे, श्री राम के भक्त थे, तो हालांकि हम बहुत कमजोर हैं, हम बहुत छोटे हैं, हमारे पास कोई ज्यादा साधन भी नहीं हो, लेकिन फिर भी हमारी जीत अर्थात हमारा यश निश्चित है। इसलिए हमें इस भक्ति मार्ग के ऊपर पूरी श्रद्धा रखनी चाहिए। प्रभु रामचंद्र जी ने आखिर रावण की हत्या कर दी, सारे वानर सेना को अपने पुष्पक विमान में उठाकर वापस अयोध्या ले आए। प्रभु रामचंद्र ने अपने उदाहरण से बाद में बहुत कुछ हमें सिखाया है। वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, मतलब आदर्श मनुष्य को कैसे होना चाहिए, आदर्श गृहस्थ को कैसे होना चाहिए, आदर्श राजा को कैसे होना चाहिए, आदर्श पति को कैसे होना चाहिए, ये सब उन्होंने दिखाया अपने जीवन से, जो कि कभी कभी भगवान श्री कृष्ण उनके कृष्ण के रूप में नहीं कर सके। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण कई बार ऐसे कार्य करते जिनका नकल हम नहीं कर सकते, जैसे कि रास लीला करना, जैसे कि गोपियों का वस्त्र हरण करना, और उन्होंने ऐसे भी अद्भुत कार्य कर दिखाए जैसे गोवर्धन लीला, गोवर्धन पर्वत को धारण करना। तो भगवान श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम कहलाते हैं, लेकिन भगवान श्री रामचंद्र मर्यादा पुरुषोत्तम है, क्योंकि कभी भी मर्यादा का व्यतिक्रमण वो नहीं करते हैं। हमेशा ध्यान में रखते हैं कि सही मर्यादा मनुष्य समाज में क्या होनी चाहिए, इसलिए उन्होंने सीता देवी को भी त्याग दिया एक धोबी के कहने पर। तो इस प्रकार से प्रभु रामचंद्र हमेशा मर्यादा को नजरअंदाज में रखते थे कि मर्यादा का उल्लंघन कभी नहीं होना चाहिए, धर्म का उल्लंघन कभी नहीं होना चाहिए। और आज वही श्री रामचंद्र, उनकी आविर्भाव तिथि है, तो हम प्रभु श्री रामचंद्र के चरण कमलों में प्रार्थना कर सकते हैं और करना चाहिए कि जिस तरह से उन्होंने उन वानर सेना को और खास करके हनुमान जैसे भक्तों को उन्होंने आध्यात्मिक बल प्रदान किया, उनको उनके चरण कमलों के प्रति भक्ति प्रदान की, ठीक उसी तरह से हमें भी वो आध्यात्मिक बल दे, जिससे कि हम इस भौतिक संसार के आकर्षणों से हम परे हो जाएं और भगवान की भक्ति में हम बहुत निष्ठा से लगें। और आगे चल के हमारे हृदय में भगवान के प्रति शुद्ध प्रेम, शुद्ध भक्ति जागृत हो जाए, यही हमारी प्रार्थना उनके चरण कमलों में आज उनके जन्म दिवस पर, आविर्भाव तिथि पर हमें करना चाहिए। बोलो भगवान श्री रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की जय, श्री राम नवमी महामहोत्सव की। तो क्या आपके कोई प्रश्न इत्यादि हैं?
श्री राम पहले आए और कृष्ण जी बाद में आए, और इन्होंने भगवान राम ने मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में लीला किया, तो हमेशा मर्यादा का ध्यान किया। जैसे कि आपने कहा कि धोबी के कहने से भी सीता जी को त्याग दिया, तो जैसे अग्नि परीक्षा हो गई तो उसमें भी ये तो कारण बताइए कैसे इनको त्याग दिया, अग्नि परीक्षा होने के बावजूद भी, जैसे वहां से अग्नि परीक्षा होकर के लाए तो फिर तो त्यागने का सवाल नहीं होना चाहिए। हो सकता है सवाल थोड़ा सा मुझे, मेरे लिए भ्रामक हो, पर आप शायद निवारण की क्षमा चाहूंगा। दूसरा है कि श्री राम जो है तो विष्णु के स्रोत हैं, पहले आए तो वही बड़े होना चाहिए, और हर जगह मर्यादा का ध्यान रखा इसके साथ साथ, और उन्होंने भी ऐसे अद्भुत लीलाएं की राम रूप में, जैसे कौशल्या जी के समय प्रकट होने के समय में ऐसे कई लीलाएं करी थी जो अचंभे में पड़ गई थी माता कौशल्या जी, और पार्वती माता को एक बार दिखाया था राम सीता सभी आगे सामने, तो उन्होंने भी ऐसी अद्भुत लीलाएं की, तो राम ही श्रेष्ठ होना चाहिए। और बाद में
ये जैसा कि हम प्रवचन में पहले बता रहे थे, कौन पहले आया कौन बाद में आया इसका कोई मतलब नहीं है, ये धारणा बहुत लोगों की है, इसलिए हमने इस बात को प्रवचन में कहा। लोग सोचते हैं कि राम पहले आए इसलिए वो श्रेष्ठ होने चाहिए, राम और कृष्ण में श्रेष्ठता की बात नहीं है, दोनों वही हैं, वही भगवान हैं, केवल भगवान वो आदि भगवान ने अपने भाव को बदलकर अलग अलग रूप धारण किए हैं, और ये एक प्रकार का चक्र है। रामचंद्र भगवान आते रहते हैं भौतिक ब्रह्मांड में, अवतार लेते रहते हैं, भगवान कृष्ण भी आते हैं, हर एक अवतार ऐसे बारंबार समय समय पर यहां पर अवतीर्ण होते रहते हैं। जब वो इस ब्रह्मांड में प्रकट होते हैं तो विष्णु के माध्यम से आते हैं, इसलिए साधारणतः यह कहा जाता है कि विष्णु उनके उद्गम है, विष्णु उद्गम स्थान है, विष्णु से ये सारे अवतार आते हैं। लेकिन श्रीमद् भागवत के प्रमाण से और चैतन्य महाप्रभु के प्रमाण से हम ये जानते हैं कि विष्णु भी वास्तव में श्री कृष्ण के ही अंश हैं। श्री कृष्ण से आते हैं बलराम, बलराम से आते हैं संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध वासुदेव, और वही संकर्षण से और ऐसे चतुर्व्यूह आते हैं, संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध वासुदेव, और फिर उस महासंकर्षण से अलग अलग विष्णु रूप आते हैं, जैसे कि महाविष्णु हैं, गर्भोदक्षायी विष्णु हैं, उनसे आते हैं क्षीरोदक्षायी विष्णु, अलग अलग तरह के विष्णु भी होते हैं। ये विषय लंबा है, लेकिन संक्षेप में बताना ये चाहते हैं कि ये जो आखिरी विष्णु है क्षीरोदक्षाय विष्णु, ये विष्णु है जो ब्रह्मा विष्णु महेश के जो त्रिमूर्ति में से एक, और बताया जाता है कि इस इन विष्णु के माध्यम से सारे अवतार प्रकट होते हैं, लेकिन अंततः ये विष्णु के रूप भी श्री कृष्ण से ही आते हैं। एते चांस कलापुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारी व्याकुलम लोकम मृडयंती युगे युगे। श्रीमद् भागवत में बताया जाता है कि एते च अंश कलाह पुंसह, जो अवतार होते हैं वो चाहे कला है या कला या अंश है, अंश के अंश, लेकिन कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण तो स्वयं भगवान है, अवतारी है, और सब जो भी हैं वो अवतार हैं। हां, प्रभु रामचंद्र जी ने भी अद्भुत कार्य कर दिखाए, इसमें कोई संदेह नहीं है, इसलिए तो उनको भगवान कहते हैं। तो रामचंद्र भी भगवान है, कृष्णचंद्र भी भगवान है, मत्स्य अवतार भी भगवान है। भगवान एक व्यक्ति हैं, लेकिन अपने आप को अलग अलग रूपों में प्रकट करते हैं, अलग अलग भाव में रहने के लिए, अलग अलग कार्य संपन्न करने के लिए। तो जब वही भगवान श्री कृष्ण मर्यादा के सीमा में रहना चाहते हैं, आदर्श एक मनुष्य क्या है वो दिखाना चाहते हैं, तो श्री राम का रूप धारण करते हैं। वही श्री कृष्ण जब ये दिखाना चाहते हैं कि क्रोध क्या चीज है, दुष्टों का नाश कैसे बुद्धि लगाकर करना चाहिए, तो नरसिंह देव का रूप धारण करते हैं। जब कोई जल में चलने की बात आती है, तो वही भगवान श्री कृष्ण विष्णु के माध्यम से कूर्म मत्स्य अवतार लेते हैं। जब पृथ्वी जो कि नीचे गर्भोदक सागर में गिर चुकी है, उसको उठाना है, तो शुकर का रूप धारण करते हैं, फिर उनको वराह देव कहते हैं। तो आदि भगवान है श्री कृष्ण, लेकिन कृष्ण में और राम में ऐसे अंतर नहीं है। ठीक है, स्वयं पृथ्वी में चली गई, भूदेवी जो कि उनकी माता है उनको ले गई। पुराणों में बताया गया है कि जैसे ही अग्नि परीक्षा के लिए बुलाया गया, तो उस समय सीता देवी को ले जाने के लिए भूदेवी आई ऊपर, एक सिंहासन पे सीता देवी को बिठाकर वहां ले गई। प्रभु रामचंद्र जी बड़े दुखी हुए और भूदेवी से कहने लगे कि लौटा दो सीता देवी को, लेकिन फिर अन्यों ने समझाया, देवताओं ने समझाया कि ये आपकी लीला है, आप याद रखिए, तो ये लीला में ऐसे होना है, और अभी आपको थोड़े समय में लीला समाप्त करके अपने धाम में जाना है, इसलिए आगे बढ़ते रहिए। फिर प्रभु रामचंद्र जी का गुस्सा शांत हो गया। और महत्वपूर्ण बात है, कोई बीए एमए पीएचडी बन गया, बड़ा इंजीनियर डॉक्टर बन गया, इसका मतलब यह नहीं है कि वह पाप नहीं करेगा। शिक्षण यह भौतिक शिक्षण है, भौतिक शिक्षण का कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर कोई आदमी जितना भी बड़ा आदमी हो संसार की दृष्टि से, अगर उसके हृदय में भक्ति भावना नहीं है भगवान के प्रति, तो वो तो दुष्ट ही कहलाता है। वो तो पाप नहीं करेगा तो और क्या करेगा। इससे हम जान सकते हैं कि केवल बाहरी शिक्षण से हमें भ्रमित नहीं होना चाहिए। अरे ये आदमी इतना शिक्षित है, ये आदमी के पास इतना ऊंचा पद है समाज में, इस आदमी के पास इतना पैसा है, इस आदमी के पास इतना अच्छा रूप है, ये है, इन चीजों से हमें प्रभावित नहीं होना चाहिए। हमें देखना चाहिए इस व्यक्ति के पास असली धन कितना है। असली धन क्या है? भगवान की भक्ति। भगवान की भक्ति कितना है इस व्यक्ति के पास, और उस दृष्टिकोण से हमें समझना चाहिए कि कौन समाज में श्रेष्ठ है और कौन नहीं है। लेकिन आजकल क्या हो गया है, जो पापी से पापी लोग हैं उनको श्रेष्ठ माना जाता है, और जो वास्तव में अच्छे लोग हैं, सज्जन लोग हैं, लोग सोचते हैं ये लोग समय बर्बाद करते हैं, इनको कुछ काम करना नहीं आता तो हरे कृष्ण हरे राम कहते रहते हैं, तो यह है कलयुग का प्रभाव। लेकिन अगर हमने प्रभु श्री रामचंद्र श्री कृष्णचंद्र की सेवा हम करते रहे तो इस कलयुग में भी राम राज आएगा। इसलिए हमें सबको भगवान के पवित्र नामों का जाप करते रहना चाहिए और भगवान के भक्तों के संग में आकर भक्ति मार्ग में प्रगति करनी चाहिए। तो आप सबसे निवेदन है कि यहां पर इस्कॉन का यह मंदिर आप सबकी सेवा के लिए उपलब्ध है, कृपया इसका लाभ उठाइए। यहां नाना प्रकार के कार्यक्रम सत्संग होते रहते हैं, यहां पर ज्यादा से ज्यादा आइएगा। जितना आप सत्संग में आएंगे उतनी तेजी से आप प्रगति कर पाएंगे। कृपया याद रखिएगा, जितना आप सत्संग से दूर रहेंगे भगवान की माया शक्ति इतनी प्रबल है कि वो आपको भगवान से दूर ले जाएगी। भक्तों के संग में आने के बाद भी कितना कठिन होता है भक्ति में प्रगति करना। अगर आप बारंबार यहां पर नहीं आएंगे, आपने आपके चित्त को कृष्ण भक्ति के रस में आप नहीं डालेंगे तो संसार के रस में बह जाएंगे। इसलिए प्रभुपाद जी की भेंट है, उन्होंने ये संस्था बनाई है जिसमें कि हम सब, कोई भी जाति के क्यों न हो, कोई भी कौम के समाज के क्यों न हो, हम सब यहां आकर भगवान की भक्ति कर सकते हैं और अपना जीवन सफल बना सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।